नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। 28 जून की शाम में राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है। वहीं बुधवार को कन्हैया लाल का पार्थिव शरीर उदयपुर में उनके पैतृक स्थान लाया गया। इस दौरान उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई, लोग कन्हैया अमर रहे के नारे लगाते दिखे। वहीं इस दौरान पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। बता दें कि उदयपुर के मालदास गली इलाके में दो लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। वहां राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि ये भाजपा का किया धरा है और निश्चित रूप से भाजपा इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। वहीं भाजपा नेता गुलाम चंद कटारिया ने कहा कि कन्हैया लाल को धमकियां दी जा रही थी। राजस्थान पुलिस को इतना दिमाग तो होना चाहिए कि ये सुरक्षा मांग रहा है और आज दुकान खोल रहा है, तो इसको कम से कम सिक्योरिटी देनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रशासनिक चूक हुई है जिसके कारण ये घटना हुई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बुधवार सुबह 4 विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुवार को वह सभी विधायकों के साथ मुंबई जाएंगे और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और आग्रह किया कि वह सरकार को जल्द फ्लोर टेस्ट के लिए आमंत्रित करे। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के 39 विधायक सरकार से बाहर और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते। मंगलवार की शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, बल्कि कुछ चीजें मंजूर हुई हैं। संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें ईडी ने 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। संजय राउत ने ईडी से 7 जुलाई तक का समय मांगा था। महाराष्ट्र से शिवसेना के बागी विधायकों ने असम में बाढ़ राहत कार्य के लिए 51 लाख रुपए दान दिए हैं। विधायकों के प्रवक्ता ने बुधवार को ये जानकारी दी। गत एक सप्ताह से शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इन विधायकों ने बगावत का झंडा उठाया। असम के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ की विभीषिका के बीच गुवाहाटी के लग्जरी होटल में ठहरने को लेकर जारी आलोचनाओं के बीच बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने पीटीआई भाषा से कहा, बाढ़ राहत कार्य में हमारे योगदान के तौर पर शिंदे ने असम मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए दान दिए। हम यहाँ लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। केसरकर ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाड़ी को विश्वास मत का सामना करने को कहा है, इसीलिए बागी विधायकों ने गुवाहाटी से निकलकर मुंबई के पास किसी स्थान पर जाने का निर्णय लिया है। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे अब पाकिस्तानी कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। इस हत्याकांड का संबंध पाकिस्तान में कराची के सुन्नी इस्लामी संगठन दावत ए इस्लामी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उदयपुर में दर्जी की हत्या करने वाले इन दो कट्टर हथियारों का संबंध भी इस पाकिस्तानी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और इस संगठन के बारे में जांच की गई तो पता चला कि इसके तार पाकिस्तान के बरेलवी पैन इस्लामिक तहरीक के लब्बैक चमरपंथी संगठन से जुड़े हैं। कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद मंगलवार को भीलवाड़ा के 38 वर्षीय निवासी रियाज अटारी और उदयपुर के निवासी 39 वर्षीय घोष मोहम्मद ने दर्जी कन्हैया लाल का चाकू से गला काट दिया। ये चाकू अटारी के एक वेल्डर ने बनाई थी, जिसे पैगम्बर विवाद से काफी पहले ही अटारी के एक वेल्डर ने कसाई के लिए तैयार किया था। देश में कोविड-19 से अभी तक पूरी तरह से निजात नहीं मिल सकी है। इसकी वजह से सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चौकसी बढ़ाने और सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया कि देश में बुधवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 14,506 नए केस मिले हैं और 30 मौतें दर्ज की गई हैं। देश में कुल 99,602 सक्रिय मामलों को छोड़कर 11,574 मरीज संक्रमण से उभर चुके हैं। पुणे के जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स में विकसित देश की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के आपातकालीन उपयोग के लिए सफल साबित हुआ है। मंगलवार देर रात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दो खुराक mRNA वैक्सीन को मंजूरी दे दी। दवा नियामक ने कुछ शर्तों के अधीन 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट के COVID-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और आने वाले महीनों में सामूहिक समारोहों या यात्राओं पर नजर रखने को कहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों और राज्यों के भीतर यात्रा करने वाले प्रतिभागियों में COVID-19 संक्रमण न हो। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।